जिसका अनुभव हो रहा है वो मैं हूँ। अनुभव और अनुभवकर्ता में कोई भेद नहीं है। तो यदि आप कहें कि मैं अनुभव करता हूँ, जो कि अहम की सर्वोच्च स्थिति है, सबसे ऊंचा आप अनुभव अहम को रख जहाँ रख सकते हैं वो है अनुभवकर्ता। इसमें कोई रोकता नहीं है आपको। अनुभवकर्ता को अहम को आप कहीं भी रख सकते हैं, चाहे वो मन पे रखें, चाहे शरीर पे रखें, चाहे वस्तुओं पे रखें। ये चित्त वृत्ति है कि वो अहम को कहीं भी जोड़ देता है, ले जाके जहाँ उस ज़रूरत होती है, जहाँ पर आवश्यकता होती है, या जहाँ जितना उसका ज्ञान होता है उस हिसाब से। यदि आपको अनुभवकर्ता का ज्ञान हो गया है, आत्मपरिचय हो गया है, तो आपका चित्त चाहेगा कि अहम भी वहाँ हो। तो बहुत लोग कहते हैं कि मैं आत्मन हूँ या मैं अनुभव करता हूँ, और वो हमने देखा कि अनुभवकर्ता अनुभव ही है, एक ही है, दोनों में भेद नहीं है, दो नहीं है। तो अनुभव उसी का हो रहा है जो कि मैं हूँ, जो कि अनुभव करता है। तो इसीलिए आत्मन को ब्रह्मन कहा गया है, क्योंकि जो जिसका अनुभव होता है, जिसको होता है, वो दोनों एक ही है। जो अद्वैत है वो स्वयं का अनुभव अनुभवकर्ता के रूप में कर रहा है, जिसको कि हमने अनुभव क्रिया कहा है। आप कहेंगे अभी तो मैंने कहा कि वो अज्ञेय है, अभी मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैंने अपना सुर बदल लिया अचानक कि हाँ ये तुम हो। तो आप ध्यान से देखें कि अनुभवकर्ता का कोई ज्ञान नहीं हो सकता। अनुभवकर्ता स्वयं अज्ञेय है, इसीलिए अनुभव भी अज्ञेय है। अनुभव के पीछे क्या है वो उसको ज्ञात नहीं हो सकता, उसे ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वो मैं हूँ, मेरा कोई ज्ञान नहीं है। मैं वो हूँ जिसको ज्ञान होता है, मैं अस्तित्व स्वयं हूँ, उसका कोई ज्ञान नहीं होता। किस बात का ज्ञान होता है आपको? जो अनुभूतियाँ आ रही है चित्त के माध्यम से। चित्त क्या है? चित्त एक अवधारणा है जो अनुभव मात्र है, क्योंकि आपको अनुभव हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि एक विशेष तरह की वस्तु की वजह से हो रहे हैं, जिसको कि मैं चित्त का नाम देता हूँ। लेकिन चित्त वस्तु नहीं है, चित्त गति मात्र है, अनुभवों की गति मात्र है। चित्त के बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो वो भी ज्ञान के परे है, लेकिन ज्ञान हो सकता है। तो जो भी आपको ज्ञान होगा, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे जागतिक हो, आप देखेंगे वो अपरोक्ष नहीं है, वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो किसी माध्यम से है। जिस भी माध्यम से हमें ज्ञान होता है, हम उसको चित्त का नाम दे देते हैं। ऐसी कोई वस्तु आपको कभी दिखाई नहीं देगी, लेकिन एक अवधारणा मात्र है चित्त। चित्त के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो अज्ञान होता है। जो उसके पीछे है, जो चित्त आपको दिखा रहा है, वो आपको कभी नहीं दिखेगा। आपको अनुभूतियाँ दिखेंगी जो कि चित्त अपने हिसाब से जोड़ तोड़ के बना देता है, तो उसको किसी न किसी रूप रंग में गढ़ देता है, वही आपको अनुभव होता है। ऐसा कभी आपको अनुभव नहीं मिलेगा जो शुद्ध हो, सिवाय अनुभवकर्ता के अनुभव के, जो कि अनुभव नहीं है। निर्विकल्प समाधि की जो स्थिति है वही शुद्ध अनुभव है, यानी कि उसमें कोई अनुभव नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात है, ये तार्किक नहीं लगेगी आपको, लेकिन यही सत्य है। जो सत्य है उसका तर्क से कोई संबंध नहीं है। तर्क जो है वो उसका जो क्षेत्र है वो छोटा है, बहुत छोटा है। बुद्धि के अंदर आता है, बुद्धि की सीमा बहुत छोटी होती है, सीमित होती है बुद्धि। इसलिए आपको वो ये बातें तार्किक नहीं लगेंगी, ये भी नहीं कह पाएंगे कि ये सत्य है। सत्य के परे है जो बुद्धि में होता है, वो उसको आप सत्य असत्य कह सकते हैं। जहाँ बुद्धि नहीं जाती, आप उसको कैसे कहेंगे सत्य है या असत्य है? तो सारा अनुभव अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, ये जानना आवश्यक है। अनुभव है वहाँ पे, हाँ वो बात सच है, लेकिन जो आपको ज्ञान हो रहा है अनुभव के माध्यम से, वो उसमें कोई सत्य नहीं है। सारा का सारा मिथ्या है, सारा का सारा अनुभव माया कहा गया है, यानी कि वो जो नहीं है। माँ का मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है उसका आपको ज्ञान हो रहा है, जो है उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है अध्यात्म में। तो ज्ञान मार्ग में आपको सिर्फ अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान नहीं होता। इसको इस बात का ध्यान रखें। आपने मान रखा है कि जो अनुभव है वो ज्ञान है, और यही सारी समस्याओं की जड़ है, यही अज्ञान की जड़ है। अपने माया को वास्तविकता मान रखा है। ये कैसे पता चलेगी माया है? आपके अपरोक्ष अनुभव से, प्रत्यक्ष प्रमाण से पता चलेगा। थोड़ा बहुत अनुमान आप लगा सकते हैं, लेकिन जैसा कि अभी हमने प्रयोग किया कि सारे अनुभव किसी माध्यम से आ रहे हैं, हम उनको इंद्रियां कह सकते हैं, हम उनको चित्त कह सकते हैं, जो चाहे कह सकते हैं आप, लेकिन वो जो भी वो दिखा रहा है, वो माध्यम जो भी दिखा रहा है आपको, वो सत्य नहीं है। वो दिखा रहा है जो उसकी वृत्ति है, जो उसकी गति है, वो आपको दिख रही है। यानी कि वो गढ़े गए हैं अनुभव, वो बनाए हुए हैं, बनावटी है, वो सत्य नहीं है, इसीलिए उसको माया कहा गया है। तो ये बड़ी समस्या है अध्यात्म में कि जो आप अनुभव कर सकते हैं वो माया होता है, जो नहीं कर सकते वो सत्य होता है, और जिसका अनुभव नहीं हो सकता वो आत्मन है, वो ब्राह्मण है, और जिसका अनुभव हो सकता है वो जगत है, वो माया है। जिसका अनुभव नहीं हो सकता उसको मैं कहा जा सकता है कि मैं ही वो हूँ, क्योंकि वो मेरा मूल है, वो मेरा सार है, वो मेरा तत्व है। तो आम लोगों की भाषा में आप कह सकते हैं कि मुझे मेरा ही अनुभव हो रहा है, यानी कि जो सारा जगत है, सारे जीव है, सारे लोग हैं, वो मैं ही हूँ, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आप बिना किसी अनुभव के, प्रत्यक्ष प्रमाण के आप ये कहने जाएंगे तो किसी की समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए अनुभव का अध्ययन आवश्यक है। अनुभव का अध्ययन करिए तो आपको उस पर एक अच्छी दृष्टि डालिए, उसको गहराई से देखें तो आपको दिखेगा कि अनुभव भी मैं ही हूँ, वस्तुएं बाहर नहीं है, वस्तुओं की अनुभूति मात्र है। अंदर बाहर भी एक तरह की अवधारणा है। मन के अंदर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मन का कोई अंदर नहीं होता, कोई बाहर नहीं होता, और शरीर के अंदर कुछ नहीं होता, शरीर ही होता है, शरीर के ही भाग होते हैं, वस्तुएं होती हैं शरीर के अंदर भी। तो ये बड़ी बड़ी लोगों ने अवधारणाएं बना रखी है, कल्पनाएं बना रखी है कि मैं शरीर के अंदर हूँ, वस्तुएं बाहर हैं, और इंद्रियों के माध्यम से मुझे बिल्कुल सच दिखाई देता है, जो भी इंद्रियां कहती है वो शत प्रतिशत सत्य कहती हैं। ये तरह तरह की अजीब अजीब अवधारणाएं लोगों ने बना रखी है, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कभी अनुभव पर, क्योंकि उसका प्रमाण ढूंढने का प्रयास नहीं किया, इसीलिए ये अज्ञान है। और क्या आपको जानकारी मिल सकती है अनुभव का के ऊपर प्रयोग आप करें तो पहली तो ये मिलेगी कि हर अनुभव माया है, हर अनुभव बनावटी है। जो इंद्रियों ने जो आपको बताया है वो है, जो अनुभूति है वो है, और मन की स्थिति पर निर्भर है। हर जीव को अलग तरह के अनुभव हो रहे हैं, बदलते रहते हैं, जो बदलता रहता है वो किसी एक सत्य से आ रहा होगा, लेकिन वो सत्य जो है आप यहाँ जान नहीं सकते। जो जान सकते हैं, जो बदलता है, चित्त की स्थिति पर निर्भर है, जीव की रचना पर निर्भर है, इस जानवर को ये अनुभव हो रहे हैं, उस जानवर को वो हो रहे हैं, इस व्यक्ति को वो ये अनुभव हो रहे हैं, उस व्यक्ति को वो हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो बदलता है वो सत्य नहीं है। उसके पीछे वो है जो नहीं बदलता, जो कि आप जान नहीं सकते। आप जो जान सकते हैं वो माया है, अनुभव के माध्यम से आप जो भी जान सकते हैं वो सिर्फ माया है। बदलती हुई संरचनाएं हैं, यानी कि बदलती हुई अनुभूतियां, संवेदनाएं हैं, जिसको कि मन गाढ़ देता है वस्तुओं के रूप में, या तरह तरह के मानसिक अनुभव के रूप में, शरीर के अनुभव के रूप में। इसका भी अध्ययन आप कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि कोई भी अनुभव ज़्यादा देर नहीं रहता, टिकता नहीं है, बदल जाता है, परिवर्तनशील है। ऐसा कोई भी अनुभव आप नहीं ला पाएंगे, ऐसा कोई भी उदाहरण आप नहीं दे पाएंगे जो नहीं बदलता अनुभव का। आप कह सकते हैं कि नहीं, या जो मेरा घर है वो वैसा ही है, कल भी वैसा ही था, आज भी ऐसा ही है, और कल भी वैसा ही रहेगा। तो ध्यान से देखें तो वो बदल रहा है, लेकिन बहुत धीरे बदल रहा है। एक समय था जब वहाँ घर नहीं था, वहाँ पे ईंट पत्थर थे, वो घर हो गया। एक समय रहेगा जब वो घर नहीं रहेगा, वो वापस ईंट पत्थर और मिट्टी हो जाएगा। बहुत धीरे बदल रहा है इसको, इसीलिए आपको एक भ्रम होता है कि वो स्थिर है, स्थायी है, लेकिन बदलता रहता है। ऐसा कोई भी अनुभव नहीं रहेगा जो नहीं बदलता। अच्छा, प्रवीण ने कहा है स्वयं का अनुभव निरंतर रहता है। आप कह सकते हैं, हाँ, आम भाषा में कह सकते हैं कि स्वयं का अनुभव कभी नहीं बदलता, लेकिन स्वयं अनुभव नहीं है, स्वयं अनुभव करता है। अनुभव वो है जो अनुभव करता के दृष्टि में है, वो जिसका अनुभवकर्ता साक्षी है वो अनुभव है, वो अनुभव की परिभाषा है। स्वयं अनुभवकर्ता अपने दृष्टि में है क्या? नहीं, वो दृश्य नहीं है, वो दृष्टा है, वो साक्षी है तो कह सकते हैं आप। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है कि स्वयं का अनुभव निरंतर रहता है। सच ये है कि स्वयं निरंतर रहता है, स्व आत्मन निरंतर है, उसका कोई अनुभव नहीं है। उसका ज्ञान कैसे है, होता है फिर आपको कैसे पता चला कि निरंतर है? क्योंकि मैं आत्मन हूँ मैं अनुभव करता हूँ, इसका ज्ञान भी मुझे ही होता है। अनुभवकर्ता का होना ही उसका ज्ञान है, वो स्वयं प्रकाशित, इसलिए उसको कहा गया है दिव्यता, यानी कि वो स्वयं प्रकाशित है, वो दिव्य है, उसमें तेज है, उसमें खुद की रोशनी है, स्वयं प्रकाशित है। इसको अनुभव के रूप में नहीं आप देख सकते। यदि आपको किसी प्रकाश का अनुभव या किसी वस्तु का अनुभव हो गया जो प्रकाशित है या दिव्य है, तो वो अनुभव है, वो माया है, वो अनुभवकर्ता नहीं है। अनुभवकर्ता वो होगा जिसको कि उस प्रकाश का या उस ज्योति का अनुभव हो रहा है। तो ध्यान रखें, स्वयं निरंतर है, स्वयं का अनुभव निरंतर नहीं है, क्योंकि स्वयं का कोई अनुभव नहीं है। ये आपका इसके सामने आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप स्वयं साक्षी है इस बात के, तो इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जो भी अनुभव है वो हमेशा बदलेगा। यदि कुछ बदलता नहीं है तो आप पाएंगे कि वहां कोई अनुभव भी नहीं है। प्रयोग कर सकते हैं आप, जैसे कि नींद में कुछ भी नहीं बदलता तो उसका कोई अनुभव नहीं होता। जब कुछ बदलने लगता है तो वो स्वप्न के रूप में उसका अनुभव होता है। और जब शरीर की इंद्रियां जो है सक्रिय हो जाती हैं तो जगत का अनुभव शुरू हो जाता है, जिसको कि आप सुबह जागना कहते हैं, और कुछ नहीं है। यदि जगत में भी कुछ नहीं बदलेगा तो उसका भी अनुभव नहीं होगा, वो भी एक पटल मात्र बन जाएगा जिस पर कि मन के अनुभव चल रहे हैं। तो बदलाव अनुभव का सार है, अनुभव का मूल है, परिवर्तन ही अनुभव है। कि आपको एक बात दिखेगी, यदि आप अपनी दृष्टि डालेंगे, आध्यात्म की दृष्टि डालेंगे उस पर, यदि आप प्रयोग करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है अनुभव में जो नहीं बदलता, वो हमेशा गतिमान है। और ऐसा कुछ भी नहीं है अनुभव में जो स्थित रहता है, जो हमेशा रहता है। इसीलिए सभी अनुभवों को नश्वर कहा गया है। कोई भी अनुभव ऐसा नहीं है जो नश्वर नहीं है। जगत नश्वर है, बनता बिगड़ता रहता है, चीज़ें आती जाती रहती है, लोग नश्वर हैं, सारे जीव जंतु जो है वो नश्वर हैं, वो आते हैं जाते हैं, आपके सारे जो संबंधी है वो नश्वर हैं, पहले नहीं थे, थोड़ी देर के लिए रहेंगे चले जाएंगे, आपके मित्र आपके साथ ही आते जाते रहते हैं। सबसे बड़ा अनुभव मृत्यु का अनुभव है, जो कि आपको पूरी तरह से बताएगा कि हाँ ये सारे नश्वर हैं। और स्वयं का जो शरीर है, जिसको आप मेरा शरीर कहते हैं, वो भी नश्वर है, वो भी एक दिन नहीं था, वो भी बदलता रहता है, और वो भी चला जाएगा, वो भी नश्वर है। और यदि आप शरीर के जो अंदरूनी अनुभूतियाँ हो रही हैं उनको देखें, तो वो तो हर पल बदलती हैं, हर क्षण जो है बदलती रहती हैं। और आपके जो मानसिक अनुभव है वो इतने ज़्यादा गतिशील है कि वो आपके हाथ में भी नहीं आते, आप पकड़ भी नहीं सकते उनको, इतने तेज बदलते हैं वो। अभी है, अभी नहीं है, नहीं के बराबर है वो, इसलिए किसी तरह की इंद्रियों के वश में नहीं है, क्योंकि बहुत तेज हैं वो। उनका जो नाद है वो बहुत तेज गति है उनमें, तो लेकिन अनुभव होता है उनका, लेकिन पूरी तरह से नश्वर है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, स्थिर नहीं है, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। ये जो है नश्वरता है अनुभव की, सारा जीवन नश्वर है, क्योंकि जीवन अनुभवों की श्रृंखला मात्र है। जिसको आप जीवन कहते हैं वो क्या है, एक के बाद एक के बाद एक अनुभव है। आप सोचते होंगे कि खाना पीना काम करना, इधर जाना उधर जाना, या फिर संबंधी बनाना, और ये सारी क्रियाएं जीवन है। नहीं, ये अनुभव है, और अनुभव बदलते रहते हैं, सारा का सारा जीवन नश्वर है। वो इस तरह से हवा की तरह बहता है, पानी की तरह बहता है, नदी की तरह बहाव है जीवन अनुभवों का। जो घटनाएं हो रही हैं आपने उनको जीवन मान लिया है, लेकिन घटनाओं के मूल में क्या है? एक घटना अनुभव मात्र है, जो कि आपने मन माने तरीके से उसकी शुरुआत और उसका अंत निश्चित कर दिया गया है, कर दिया है कि ये घटना यहाँ शुरू होती है, ये घटना यहाँ समाप्त होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक घटना समाप्त होती है, दूसरी शुरू होती है, एक अनुभव समाप्त होता है, दूसरा शुरू होता है, एक निरंतर बदलाव है नदी की तरह। ऐसा नहीं है कि एक अनुभव हुआ उसके बाद कुछ नहीं, फिर दूसरा अनुभव, ऐसा नहीं है। उनमें अनुभव में कोई बीच में ठहराव नहीं आता, निरंतर बदलाव है। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सब दिखेगा, और इसीलिए वो सारा का सारा नश्वर है। यदि वो बदलना बंद हो जाए तो वो अनुभव नहीं है, बड़ी विचित्र सी बात है। इसीलिए जो वस्तु, जो अनुभव या जो घटना शुरू होते ही बदलने लगे, क्या आप कह सकते हैं कि उसका अस्तित्व है? क्या आप कह सकते हैं कि वो वास्तविक है, वो आपके सामने है? क्योंकि जैसे ही आपके सामने आती है, वो घटना वो नहीं रहती, वो वस्तु वो नहीं रहती जो थी। इसीलिए हम उसको माया कहते हैं, इसीलिए हम उसको सिर्फ एक अवधारणा कहते हैं, एक कल्पना कहते हैं। क्योंकि जैसे ही उस वस्तु का या जैसे ही उस घटना का, उस अनुभूति का अनुभव होता है, वो बदल चुकी होती है, वो वहाँ नहीं है। जो जैसा कि आपने देखा था वो वहाँ नहीं है। तो यदि वो बहुत धीरे बदले, जैसे कि आपका घर है या आपका शरीर है या आपका आपके संबंधी हैं, लोग हैं, बहुत धीरे बदलते हैं, तो आपको एक भ्रम होगा कि वो स्थायी है, वो स्थिर है, और आपका मन इसी भ्रम में पड़ा रहता है। इसी की वजह से वो मन को आसक्ति हो जाती है, इसी की वजह से वो मन चिपका रहता है उन अनुभवों से, क्योंकि थोड़ा धीरे बदलते हैं वो, तो ऐसा भ्रम होता है कि हाँ ये हमेशा रहेंगे। लेकिन हमेशा कुछ भी नहीं रहेगा, ये जीवन हमेशा नहीं रहेगा, ये जगत हमेशा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अभी भी नहीं है, आपकी आंखों के सामने वो बदल रहा है। कुछ चीज़ें जो है तेज बदलती हैं, कुछ चीज़ें धीरे बदलती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं बदलेंगी। बहुत आसान है देखना, आपका प्रत्यक्ष अनुभव है ये, कि सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जैसे ही आपको कोई अनुभव होता है, वो अनुभव बदल चुका होता है, उसी क्षण बदल गया होता है वो, चाहे कितने भी धीरे बदलें। इसीलिए उसको माया कहा गया है, कहा गया है कि वो वहाँ नहीं है। तो ऐसा भ्रम क्यों होता है कि वो स्थिर है, वो स्थायी है, वो वस्तु कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, ऐसा क्यों अनुभव होता है हमें? तो मन पे, चित्त की वृत्ति पे ध्यान दें, चित्त में स्मृति है। यदि कोई वस्तु थोड़ी देर तक ना बदले तो उसकी स्मृति बन जाती है, उसका एक संस्कार चित्त पे बन जाता है, उसकी एक छाप बन जाती है। क्योंकि जल्दी नहीं बदली तो थोड़ा सा वक्त मिल जाता है चित्त को उसका संस्कार बनाने के लिए। इसीलिए आपको लगता है, भ्रम होता है, क्योंकि आप उसकी स्मृति को देखते हैं कि हाँ वो जो पत्थर पड़ा है वो थोड़ी देर पहले भी था, अभी भी है। यदि आप स्मृति की तुलना वस्तुओं के साथ करें तो वो थोड़ी बहुत स्थायी दिखाई देती है। थोड़ा सा पेचीदा ये वाक्य था, ध्यान से देखें। यदि किसी वस्तु की स्मृति होती है और आप उसको, उस स्मृति को वस्तुओं के साथ उसकी तुलना करते हैं, तो वो वस्तु यदि धीरे बदल रही है तो वो स्थायी दिखाई देती है। जैसे कि आपका घर, एक महीने पहले भी यही था, एक साल पहले भी शायद यही था, और अब जो है चित्त जो है उसका आगे भविष्य बना देता है कि बदल नहीं रहा तो थोड़े दिन और भी चलेगा, और इस तरह से उसकी स्थिरता का भ्रम होता है, जो कि चित्त निर्मित है। जो स्थायित्व है वस्तुओं का, जो अनुभवों का स्थायित्व है, वो चित्त निर्मित है, वो परिकल्पना है। ध्यान से देखें इस बात को। जबकि वास्तविकता क्या है कि वो बदल रही है वस्तु, वो नहीं रही जो कि आपने अनुभव किया था। यदि आपकी स्मृति मिटा दी जाए, स्थायित्व भी चला जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, शुद्ध अनुभव रह जाएगा जो पल पल प्रतिपल बदलता है। इसका अर्थ है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा जो कि स्थायी है, कुछ भी नहीं है ऐसा जो वास्तविक है। जो भ्रम है वो स्मृति की वजह से है। स्मृति बड़ा रोचक शब्द है, क्योंकि चित्त स्मृति ही है, संस्कार मात्र है, अनुभव जो छोड़ गए हैं संस्कार। इसी वजह से जो माया है, जो जगत का अनुभव है, वो स्मृति मात्र का अनुभव है। स्मृति यदि चित्त है तो जगत चित्त का अनुभव है। समझने का प्रयास आपको करना चाहिए ये बात, इस पर मनन करना चाहिए जो मैंने अभी कहा, वहाँ कोई वास्तविक जगत नहीं है। बड़ा भ्रम जो है, ये माया जो है, चित्त की रची हुई है, चित्त की रचना है, चित्त निर्मित है। क्या है जो बदल रहा है? कुछ भी नहीं है वहाँ पे जो बदल रहा है, भ्रम मात्र है वो, विक्षेप है वो, परिकल्पना है आपकी कि वहाँ पे कुछ है जो बदल रहा है, जो कल भी वो ऐसा था आज भी वैसा है कल भी रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं उसमें और नश्वर है। यहाँ जगत में, शरीर में, या आपके किसी भी अनुभव में, मन में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वास्तविक हो, जो यथार्थ हो, जो सत्य हो। इसीलिए हम कहते हैं कि एक आम मनुष्य जो है वो अज्ञान में है, इस अज्ञान में है कि ये सारी वस्तुएं, सारा जगत, सारा मेरा शरीर, मैं सत्य है, इसमें से एक भी चीज़, एक भी अनुभव सत्य नहीं है, भ्रम है, चित्त की वृत्ति है, क्योंकि स्मृति का अनुभव है आपको। इंद्रियां भी एक तरह की स्मृति है। ध्यान से देखें, जब मैं इंद्रियों के बारे में बताऊंगा आगे जाके, एक बड़ी विचित्र चीज़ है देखो जो असत्य है उसकी बहुत ज़्यादा व्याख्या की जा सकती है, किसी गहराई में बहुत उतरा जा सकता है कि ये सारी माया कैसे रची जा रही है, उसका आप गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। जो सत्य है उसे कुछ भी नहीं कर सकते, उसका कोई ज्ञान नहीं हो सकता। माया का ज्ञान हो सकता है, मायावी ज्ञान आपको हो सकता है, कई जन निकल जाएंगे लेकिन आपको ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि बहुत गहन है, बहुत पेचीदा तरीके से जो है ये रचा गया है, ये सारी रचनाएं। लेकिन मैं आप, क्योंकि आज आपको सार दे रहा हूँ, हम थोड़ी भी गहराई में जाएंगे उसके बाद आपकी रुचि है, क्योंकि सिर दर्द हो जाता है बहुत बड़ा इसका, उसे कोई अंत नहीं दिखता कि ये अनुभव है, इसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है। आप देखेंगे जो वैज्ञानिक हैं वो अनुभवों का अध्ययन करते हैं, और उनके हिसाब से जो यथार्थ है, जो वास्तविक जगत है, वही सत्य है उनके हिसाब से, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है उसके पीछे। हाँ, एक के पीछे एक उनको रचनाएं मिलती जाती हैं, और उसकी गति का भी वो अध्ययन करते हैं, तो एक किसी नियमों के हिसाब से उनकी गति होती है, उतना ही विज्ञान का क्षेत्र है, उसके बाहर उसको कुछ नहीं मालूम। जो विज्ञान है वो माया का अध्ययन कर रहा है, वो असत्य का अध्ययन कर रहा है, और कुछ लोग उसी को सत्य मान बैठते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं अध्ययन, लेकिन थोड़ा गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि मैं जिस चीज़ को सत्य मान बैठा हूँ वो सारा मन का बनाया हुआ खेल है, वो सारा नाटक जो है मन का है, स्मृति का है। स्मृति क्या है? एक अनुभव है। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो अनुभव है वही अपना कारण है? अनुभव का कारण स्मृति है, और स्मृति स्वयं अनुभव है, तो अनुभव स्वयं का कारण है। तो आप देखेंगे इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता, आखिर में इसको कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है। आत्मन है, ब्रह्मन है, लेकिन अनुभव नहीं है, वो माया मात्र है, वो चित्र है जो अनुभवकर्ता की पृष्ठभूमि पर दिख रहे हैं, लेकिन वो उसमें कोई यथार्थ नहीं है। यदि वो प्रकाश बंद हो जाए तो सारे चित्र बंद हो जाते हैं। अनुभवकर्ता के जो प्रकाश है, आत्मन के प्रकाश में जो आपको दिख रहा है, वो आत्मन कभी भी बंद कर सकता है, लेकिन वो जो प्रकाश है वो हमेशा होता है, वो बंद नहीं होता। दो चीज़ें हमने देखी जिसका मूल निकलता है कि अनुभव असत्य है, और वो दो चीज़ें हैं कि अनुभव इंद्रियों से, इंद्रिय जनित है, इंद्रियाँ स्वयं चित्त का भाग है, शरीर स्वयं चित्त का भाग है, सारा जगत चित्त है, जो भी अनुभव है वो माया है क्योंकि बदल रहा है। इसीलिए अद्वैत में सत्य के मानदंड परिवर्तनशीलता रखा गया है। अब आपकी समझ में आ गया होगा, उस दिन हमने सत्य के मानदंड के बारे में बात की थी, और मैंने कहा था अद्वैत में बहुत सरल मानदंड है सत्य का, कि जो बदलता है वो असत्य है, जो नहीं बदलता वो सत्य है। और मैंने कहा था मैं बताऊंगा कि क्यों है ऐसा, और आज आपको उसका ज्ञान मिल गया होगा कि ऐसा क्यों रखा गया है। क्योंकि जो बदलता है वो मायावी है, यानी कि वो चित्त निर्मित है, स्मृति पर आधारित है। स्मृति नहीं तो अनुभव नहीं। स्मृति क्या है? चित्त ही स्वयं स्मृति है। अलग अलग नाम है, दो नाम है, जो चलती हुई स्मृति है, जिस स्मृति में गति है वो चित्त है। आप इसको ध्यान से देखें, ये आपका प्रत्यक्ष अनुभव है। आपके मन में जो विचार आते हैं वो कहाँ से आते हैं? स्मृति से आते हैं, यानी कि स्मृति चलती है उस वक्त, गति करती है, तो विचार के रूप में उसका अनुभव आता है। आपकी भावनाएं क्या हैं? वो किसी तरह की स्मृति जो है उसका खेल है, एक तरह की गति है उसमें, वो भावनाओं के रूप में आती है, अनुभव के रूप में। इसी तरह से जो एक स्मृति है, जब वो शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से जिस उसका अनुभव होता है, तो हम उसको जगत कहते हैं। हम उसको जीवन कहते हैं। सारा खेल है, सारी माया है, सारा चित्त निर्मित है। स्मृति कभी स्थायी नहीं होती, स्मृति हमेशा गतिमान होती है, जिसको कि हम चित्त कहते हैं। स्मृति को ही मैंने पराभौतिक परामानसिक रचनाएं कहा है। स्मृति को कर्म भी कहा गया है, जो कर्मों का जो संचय है एक, उसको कर्म भी कहा गया है, संस्कार भी कहा गया है। स्मृति बहुत अच्छा शब्द है क्योंकि मृत से निकला है, मृ का अर्थ है मिट्टी, जैसे मिट्टी पर छाप पड़ती है आपके कदमों की, या गीली मिट्टी पर आप हाथ से दबाएं तो जो छाप पड़ती है वो स्मृति होती है, वहाँ से ये शब्द निकला है स्मृति। बहुत अच्छा शब्द है, संस्कृत में सारे शब्द बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। शब्दों के पीछे इतना बड़ा अर्थ होता है उनका कि शब्द से ही आपको पता चल जाता है क्या क्या कहा गया है। स्मृति संस्कार है एक तरह का, और ये संस्कार, इनको ही कर्म कहा गया है क्योंकि अनुभवों से बनती हैं स्मृतियाँ। अनुभव वो हैं जो जो हम देखते हैं, करते हैं, वो अनुभव है। तो इन सब का अर्थ है, बड़ा गहरा अर्थ है, जो कि हम धीरे धीरे एक एक परत खोलेंगे इस सारे ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की, क्योंकि स्मृति एक तरह की रचना है, लेकिन वो न मानसिक है न भौतिक है, क्योंकि जो स्मृति से भौतिक और मानसिक अनुभव आ रहे हैं, मानसिक और भौतिक अनुभव स्मृति जन्म देती है इन अनुभवों को। इसीलिए स्मृति जो है इनके ऊपर होनी चाहिए, इनके बाहर होनी चाहिए, इन भौतिक और मानसिक अनुभवों के, यदि आप इनको बांटना चाहें तो, या शरीर के अनुभवों के। इसीलिए मैंने उसको पराभौतिक कहा है, परामानसिक कहा है। और जब उसमें गति होती है स्मृति में, जो कि एक अवधारणा मात्र है, इसमें हमेशा गति होती है, स्थित कभी नहीं होती स्थिर स्मृति, उसको हम चित्त कहते हैं। चित्त चित्त की वृत्ति ही है, चित्त अलग से और वृत्ति अलग से आपको नहीं दिखेगी। वो चित्त वृत्ति क्या है? स्मृतियों से जो अनुभव निकाल के आपको देता है चित्त अनुभवकर्ता को। इसीलिए सारा जगत चित्त वृत्ति है, इसीलिए आपका शरीर चित्त वृत्ति है, और मन भी वृत्ति है, और ये सब माया है, सब चित्त निर्मित है। किसी और धरातल से, किसी और आधार से निकाल के आपको वो अनुभव दे रहा है चित्त, और वो आधार क्या है? वो मैं हूँ, मैं स्वयं हूँ, वो आत्मन है।